जिसका आगाज भी सजदा है और जिसका अंजाम भी सजदा है, और ये पूरी हयात तैयबा इन दो सजदों के दरमियान है। इबादत ही इबादत है, इल्म ही इल्म है, मारिफत ही मारिफत है। वो इबादत की जिसका मुझ जैसे और आप जैसे इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता, जिस इबादत की एक जुज नमाज और सलात नमाज की कैफियत ये है कि जब पांव में तीर लगा और वो तीर अली इब्ने अबी तालिब की पांव की हड्डी को तोड़ता हुआ दूसरी तरफ चला गया, गुजर गया, और अब जब निकाला जाता और शिद्दत तकलीफ के बायस मौला मुतकिया ने रोक दिया, तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया थोड़ा सा ठहर जाओ, सब्र कर लो। अली जब नमाज के लिए खड़े हो तो फिर इस तीर को निकाल लेना, जब खड़े हुए नमाज के लिए ये इबादत, ये दो सजदों के दरमियान जिंदगी और ये कैफियत इबादत और कैफियत इताअत और इताअत और इबादत की बुलंदी और ये मकाम मारिफत और ये मारिफत की मेराज कि जब नमाज में खड़े हुए तो वो तीर की जो हजरत मौला मुत्तकियान की हड्डी को भी उबूर कर लिया था, उसे निकाल लिया था, हजरत को खबर नहीं हुई। मुमकिन है कोई इंसान अपने मकाम पर ताज्जुब करे कि ये कैसे मुमकिन है कि तीर निकाल लिया जो खबर ना हो, ये मुबालगा है। नहीं, अभी इन्हीं दिनों में पंजाब यूनिवर्सिटी में एक कामयाब और शफीक चुका हकीकत राशन बेग ने एक मौलाना ने स्पीच करते हुए थोड़ा सा पहले जब तौहीद के बारे में गुफ्तगू कर रहा था और मौसीकी के मना कर रहा था, तो मां की मौसीकी छोड़ दो, ये तबला ये सारंगी ये सारी चीजें छोड़ दो, बदले में जन्नत में क्या मिलेगा अगर तुमने इस मौसीकी को छोड़ दिया तो जन्नत में जाओगे तो वो हवा शोर बन जाएगी और वो सारा आपको देख सकते हैं मौजूद है। तो 70 साल तक ये मौसीकी जारी रहेगी और उसके बाद जन्नती मसरूर होंगे और वज्र में होंगे, खुदा पूछेगा बदलाओ क्या इससे बेहतर मौसीकी सुनाओ, कहा सुनाओ। तो परवरदिगार हजरत दाऊद को हुक्म देंगे और हजरत दाऊद बयान करेंगे, उनके सामने नगमे तौहीद को बयान करेंगे और 70 साल तक ले जाएंगे उसको, और उसके बाद खुदा उनसे पूछेगा जन्नतियों से कि बताओ क्या इससे भी ज्यादा खूबसूरत नगमा सुनाओ मैं तुम्हें, क्या क्या इससे ज्यादा मुमकिन है, कहां मुमकिन है। और फिर अपने हबीब को हुक्म देंगे कि आप इनको नगमे तौहीद सुनाइए। अब आप फरमा रहे सुभान अल्लाह, मैं किसी के नगमे कौन कर रहा हूं, ऐसा हो कि आप ये समझ लें शायद कि मेरा बयान मालूम के साथ सलावत पढ़ लें मोहम्मद वाले क्या इससे भी बेहतर नगमा सुनो जन्नती कहेगी तो मुमकिन है, कहा क्यों नहीं। और उसके बाद खुद तौहीद खुद अल्लाह सुनाएगा और अपने जहान से रोते हुए जहान से अपने चेहरे से पर्दा उठाएगा और तो जन्नती उठो आओ ज़ियारत कर लो गई और तमाम मेरी जन्नत हक तआला की ज़ियारत में मुस्तफर हो जाएंगे। इनकी बड़ी शख्सियत है मुहतरम है, बयान करेगी तो ही है। और उसके बाद खुदा पूछेगा कि आप राजी हो खुश हो। मैंने 17 दिनों में पिछले से बोले मुत्तकियान की जुबान से तौहीद के मफाहिम इसीलिए आपकी खिदमत में पेश किए कि मौलाना मुवाहिदीन के दर मारिफत से हट के अगर हम तौहीद के लिए तलाश करेंगे तो हमें शिर्क के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तीर निकल रहा है और एहसास नहीं हो रहा, क्यों एहसास नहीं हो रहा। अगर अली इब्ने अबी तालिब रूबरू हक तआला के जमाल का मुशाहिदा न कर रहे हो तो ये मुमकिन नहीं था। लेकिन जब पूछा गया तो बताया कि उस खुदा को इन जाहिरी आंखों से देखना मुमकिन नहीं है, बसर के लिए हक तआला की ज़ियारत काबिल-ए-रूहियत नहीं है, बसीरत चाहिए। पूछा आपने देखा है, तो कहा अरे भला कब अनदेखे खुदा की इबादत कर सकता है, तो कैसे देखा है, इसलिए कि देखे नहीं तो फिर देख कैसे नहीं कर सकता, और देख निकले और एहसास भी ना हो। हाँ मारिफत की बुलंदी यही है, इसी का आप पढ़िए मेरे मिताले को, आपने कुरान करीम पढ़ा है, ताकि सूरह का इजाला हो जाए। सूरह यूसुफ में जब अजीज मिस्र की सौजा सुलेखा को सरदार ने मिस्र की हवाली में ये ताने देना शुरू किए कि आप मलिका है, शहजादी है, और एक गुलाम के इश्क इश्क में मुबतला हो गई, हसीर हो गई, आपको ये जेब नहीं देता। और जब मुसलसल सुलेखा ने ताने सुने तो बात अच्छा जमा हो जो दावत की, और दावत करने के बाद उन्होंने ये फल रखे और हाथ में छुरी पकड़ा दी, मेरी ख्वाहिश है कि अभी नहीं काटना तुमने इस फूल को, जब मैं कहूंगी फिर काटना। और एक मतलब जब उन्होंने फल अपने हाथों में उठाया तो हजरत यूसुफ को इशारा किया कि आप गुजरते हुए आगे मेरी तरफ आए, और जब हजरत यूसुफ जनाब सुलेखा की तरफ बढ़े जो खवातीन मौजूद थी और यूसुफ के चेहरे की जियारत कर रही थी, इस जवान मजासी की दीदार में इस कदर महक हो गई कि कुरान मजीद कहते हैं कि पता फकता ना ऐ दिया उन्नो के उन्होंने अपने हाथ काट डाले, उन्हें बिल्कुल खबर ना हुई। तो कुरान हमें बता रहा है कि ताज्जुब की बात नहीं है, इसी के इस इंसान के सामने जब हुस्न मजासी और जमाल मजासी आ जाए तो वो अपने हाथों को काट देता है, तो वो अली की जो जमाल हकीकत को अपनी निगाहों से मुशाहिदा कर रहा है। शहादत है इस दावे बशरियत को, इस दावे इंसानियत को, इस माह मुबारक रमजान में, अल्लाह के महीने में, अल्लाह के घर में, अल्लाह की नमाज में, अल्लाह के सजदे में, अल्लाह के इस सबसे अजीम शाहदार अब्द को शहीद किया गया, इस काबे बशरे को मुनादिम कर दिया गया, कुरान नातिक के सर अकदस को पारा पारा कर दिया गया। और मैं समझता हूं कि तारीख है बशर का सबसे पहला दहशतगर्द, जहां से खाने खोदा हुए मस्जिद में दहशतगर्दी का आगाज हुआ, ये भी अब्दुर्रहमान जो ने मुझे बोरानी का बेटा। लेकिन मेरे अजीजों आई कुछ लोगों के गौर करने के दाम में अपनी गुंजाइश नहीं है, मेरी मजबूरी है कि इस्लाम में दहशतगर्दी का आगाज कहां से हुआ। अगर जिस जाहिरी तौर पर हमें यही शख्स नजर आता है जिसने पहली मरतबा खाने खुदा में खुशूनत दहशतगर्दी की बुनियाद रखी, लेकिन जब हम जायजा लेंगे तो इस दहशतगर्दी की बुनियादें इससे भी पहले और तलाश करेंगे कोई और है जिसने इस्लाम में इस्लामी नारे मोहम्मदी के खूबसूरत चेहरे पर ये नासीबा और बदनुमा दाग लगाया, और जहां से दहशतगर्दी का आगाज हुआ कि जो मकतब दहशतगर्दी है और जिस उस जहनीत, क्योंकि अगर हम उस जहनीत को नहीं समझेंगे और उस फर्क को नहीं समझेंगे तो असर हाजिर में इस्लाम में नारे मोहम्मदी की नजरियाती सरहदों का दिफा नहीं कर सकते। मस्जिद नबवी में पैगंबर इस्लाम तशरीफ फरमा है, कहां से इस्लाम लेना है, कहां से इस्लाम की वो तकालीफ, इस्लाम की वो सदावा, वो नाकाबले तलाफी नुकसान जो सदर इस्लाम से लेके आज तक दीन इस्लाम को पहुंचा है, जिसका तसव्वुर मुमकिन नहीं है, उसकी बुनियाद क्या है। पैगंबर इस्लाम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, अपने असहाब के बीच में बैठे हैं, पर ऐसे आदम एक शख्स आया और आकर पैगंबर इस्लाम की खिदमत में जसारत और बेदबी शुरू कर दी, दुश्मन तराजी शुरू कर दी, और जब वो काफी देर तक तौहीद करता रहा हुजूर मुबारक की मरतबत की, वैसे में पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि फक्तऊ लिसाना, उठो इस शख्स की जुबान को काट दो, شخص تیزی سے اٹھا اور اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور وہ تلوار فضا میں چمکی اور لہرائی جو اس سے پہلے کبھی نہیں چمکی تھی. اور اس ستارے دیکھا میں کوئی خاص کارنامہ انجام نہیں دیا تھا. اور وہ شخص تیزی سے بڑا مسجد کے دروازے پر اس شخص کے اوپر لپکا. دہشت گردی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ فکر، یہ طرز تفکر اسلام میں کہاں سے آیا اور کہاں تک پہنچا جو آج پوری امت کے لیے معصوم بن چکا ہے. اب قریب تھا کہ تلوار سے اس شخص کی گردن یا زبان کاٹ دے. بتاؤ بولے متقیا سمجھے گا رکو رکو کیا کرنے لگے ہو؟ پیغمبر نے فرمایا کیا فرمایا؟ تو پیغمبر نے کہا کہ شخص کی زبان کاٹ دو. تو کچھ اور کہا یا نہیں کہا؟ بس یہی کہا تو چھوڑ دو. اس شخص کی طرف مخاطب ہوئے اور دیکھنے کے بعد فرمایا بدو کہا کہ الگ حاجت کیا تجھے کچھ حاجت ہے؟ کہا میں بہت حاجت مند ہوں، میں فقیر ہوں، بہت مشکل میں ہوں. ایک مرتبہ بولے متقیان نے اس کی حاجت کو پورا فرما دیا پورا فرما دیا. اور وہ شخص کے جو اس کی زبان کو کاٹنے کے لیے آیا تھا ایک مرتبہ اسی ایسی کے ساتھ دوبارہ پیغمبر اسلام کی طرف دلکا اور پڑھنے کے بعد پایا ہے سالت میں آنے کی شکایت ہوئی کہ یا رسول اللہ آپ نے جس شخص کی زبان کاٹنے کا امر کیا تھا علی نے اسے مالا مال کر دیا. علی نے اسے اس قدر مار دے دیا کہ اسے غنی کر دیا. شکایت کی ایک مرتبہ پیغمبر مسکرائے مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا کہ میرا مقصود بھی یہی تھا.
اللہ کی قسم اگر میں نے یہ دیکھا
पिछले 12 सालों में किसी ने बैतुल माल से पैसे उठाकर रकम उठाकर अपनी बीवी का हक मार दिया या अपनी महबूबा को अंगूठी दी या अपनी गली से हार गया? अल्लाह लोग अदर तो उनसे वापस कर जाऊंगा। समझ रहे क्यों शहीद किया गया कि नबी तारे को, क्यों इस दावे अदल और इंसाफ को मुनहरिम कर दिया गया, इसकी वजूहत क्या है? बड़ी मरतबा वलीद बिन उकबा नबी वलीद पूरी रवैया की नुमाइंदगी में पहुंचा, गाली माजी से उतारना रखिए जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, पूरी तफसीलात में बयान कर चुका हूं। बस आप गुजश्ता का सलामत और आइंदा एहतियात के कायल हो जाए, हम आपके साथ हैं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम चलते वापिस ले लेंगे। आप तफसीलात को तारीखों में देख सकते हैं, यहां तक कि माजी के अश्तर नफे ही नहीं आकर कहा आप इनसे सुलह कर लीजिए, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, अभी हाथ ना डालिए। जिस वैसे करने के लिए हमारी मुश्किल बढ़ जाएगी। एक मरतबा हरीशे तारे ने मालिक अश्तर की निगाहों में अपनी आंखें गाड़ दी और फरमाया, मालिक अश्तर क्या समझते हो, तुम्हारी ये हुकूमत और खिलाफत और सल्तनत की निगाहों में बदली की चीख से भी कमता है। और वो जुमला तो सबको याद है, जब जंगे से वीन में मैं बहुत ही माजरत के साथ कुछ तरह की जल्दी अपने कलाम को मुकम्मल करूं वो गुजर होने से, जंगे से वीन में जब अली शिंदे के तारे अपनी फटी हुई जूती को गाड़ रहे थे तो ऐसे में आपके चचा के बेटे इतने अब्बास आगे बढ़े और मौला ने मरतबा अपने अब्बास से पूछा, माँ की मतला अपने अब्बास से ये तो बताओ कि मेरी इस जूती की कीमत क्या है। अपने अब्बास ने बोला, अगर आप नाराज ना हो तो मैं अर्ज करूं कि ला की मतला इसकी अब कोई भी कीमत नहीं, इतनी घट चुकी है कि अगर आप इसे फेंक दें तो अरब का सबसे बड़ा फकीर और तोहीदा से इंसान इसको नहीं उठाएगा। एक मरतबा अली ने तालिब ने अपने अब्बास की तरफ देखा और देखने के बाद कहा, ए इब्ने अब्बास, तुम्हारी इस हुकूमत और सल्तनत और खिलाफत की कीमत अली इब्ने अबी तालिब की निगाहों में इस जूती से भी कमतर है। जो तारीखी जुमला का सौ अदालत इंसानिया निगाह अदालत इंसान में जोर जता आपने कहा कि तारीख बशर में और तारीख इंसानियत में अली इब्ने अबी तालिब को वाहिद हुक्मरान जो ये जुमला कह सकता है, क्या कि तख्त सल्तनत पस्त और अली की जूती बुलंद। अली किसी पाकिस्तान जैसे किसी छोटे से मुल्क के हुक्मरान नहीं थे, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने अली इब्ने अबी तालिब इस्लामी दुनिया पर, और उसके बावजूद जो जुमला कह रहे हैं क्या तवज्जो फरमाइए, जूती बलंद क्यों? इसलिए तख्त सल्तनत पर कभी बातिल के पांव आए और कभी हक के पांव आए, लेकिन यह मुबारक नाल है जिसके ऊपर सिर्फ हमेशा हक के पांव आए। और पैगंबर ऐसा मुस्कुराए और کا مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا عبداللہ ابن مسعود تو بھی کس قدر عجیب آدمی ہے, دیکھ بھی رہا ہے اور پوچھ بھی رہا ہے. یہ حق ہے, یہ حق ہے. اور جب آئے تو فرمایا کہ جال حق و مقرر اور اس ہمیں وضو کے آخری لمحات میں ایک مرتبہ پورے اعلانات کیے فسد روزی بلو کے سارے سلسلے کے بعد جب آئے تو خطبے کا آغاز کیا تو حضرت کی خلافت کا پہلا خطبہ تھا. ایسے میں ایک ساتھ بن سہانے ابدی جو کئی مرتبہ تشریف لائے تھے اور جنہیں معلوم یہ اشتر نبی بازار سے بہت اصرار کے ساتھ لے آئے, تو سارا واقعہ میں کسی مقام پہ عرض کر چکا ہوں. تو ساسہ بن سہانے ابدی جو اس اصل میں پہلا انسان ہے صدر اسلام میں جو فلسفہ یونان کے اوپر پوری مہارت رکھتا تھا اور مختلف فنون قدیمہ کے اوپر ایک مرتبہ جو پہلی مرتبہ ہو رہا ہے تو کبھی آپ نے خطبہ سنا اور باپ علم نے نبوی کی وسعتوں کا اندازہ کیا تو خطبے کے بیچ میں کھڑے ہوئے ایک مرتبہ رہا نہیں گیا ساسہ سے کہا علی ابن ابی طالب معاف کیجیے گا میں نے اپنے خطبے کو توڑا لیکن ابھی ابھی آپ نے اپنے تعارف میں کچھ کلمات کہے مجھے پہچانو میں مولود کعبہ ہوں. اپنے تعارف میں آپ نے بہت کچھ کہا لیکن علی ابن ابی طالب بے ادبی معاف کیجیے گا میں نے اپنے خطبے کو توڑا لیکن ماں سے یہ نظر خلافہ بد سے یہ نظر ہوں اے علی ابن ابی طالب خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی, آپ نے خلافت کو زینت دی.
اور سجدہ بیٹے نے مکمل کیا اور
اس طرح سے مکمل یہ کہ میں اپنا سر خود نہیں کروں گا, دشمن کاٹ کے لے جائے. بس اقدس سے ضرورت لگ چکی ہے. ایک مرتبہ حضرت نے سر کو باندھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھی. جب وہ تفصیل سر حضرت کی شہادت نے یاد بنایا تھا, شکر اب صرف دو گھرے ایسے لوگ. اس کے بعد ایک مرتبہ عبد الرحمان کو بلایا گیا, اس سے پوچھا اے عبد الرحمان جی نے مجھے بلا دی, تو بتا کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا؟ ایک مرتبہ عبد الرحمان کی کہہ کے بہت عجیب ہو گئی. وہ خوش ہو گئے, عبد الرحمان سے کچھ بولا نہیں تھا, کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن لبوں میں خوشی اور گھبراہٹ کے بس کچھ کہہ نہیں سکا. کون مثال دے گا؟ ایک مرتبہ فرمایا حسن عبد الرحمان نے مجھے بولا تو پانی پلاؤں. تاریخ بشریت, تاریخ انسانیت, قیامت تک علی ابن ابی طالب کو یہ اخلاقی معجزہ کبھی فراموش نہیں کر سکتا کہ اپنے پاگل کو شربت پیش کیا, پانی پیش کیا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ بس میرے حصو میں وہ تفصیل سے حل کرنا چاہ رہا تھا, بالکل دام وقت کی گنجائش نہیں. ایک جملہ حضروں پر علی ابن ابی طالب کے دوستوں نے ابن ملجم کو رسیوں میں باندھا ہوا تھا, سب غصب کی حالت میں تلوار نکالے ہوئے تو اچھے سے مارنا چاہ رہا تھا, بہت سارے کلمات کو بہت کچھ کہا. ایک مرتبہ جب گفتگو کر رہے تھے اسے سوال کر رہے تھے اپنے حساب سے کہ اس کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو, ہر کس کے جو باندھا ہوئے تم نے اس کی رسیوں کو کھول دو, ڈھیلا کر دو. میں دس سے ادب چھوڑ کر بولے متقیان کی بادہ میں اس کو بولا آپ یہ برداشت نہیں ہوا کہ آپ کے قاتل کو رسیوں میں کس کے باندھا جائے؟ اے کاش آپ کوفہ اور شام کے درباروں میں اور بازاروں میں وہ منظر دیکھتے کہ آپ کی بیٹیوں کو کس انداز سے رسیوں میں باندھ کے لے جایا گیا, اور وہ بیٹی کی جو آپ کے لیے بھی پائے سے زینت تھی, جب کوفہ اور شام کا سفر عبور واپس مدینے پہنچی تو کس انداز سے اپنے نانے بزرگوا سے فریاد کی. ایک مرتبہ کہا لوگوں مسجد نبوی سے باہر نکل جاؤ, سب یہاں سے باہر چلے جاؤ کہ مجھے آج اپنے نانا سے کچھ باتیں کرنی ہے. جب سب لوگ باہر چلے گئے, بی بی نے مسجد نبوی حجرہ رسول کے دروازے کو بند کر دیا, اور اس کے بعد پہنچی قبر رسول پر اور ایک مرتبہ اپنی آستینوں کو الٹا اور آستینے الٹنے کے بعد فریاد کی, نانا جان یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے بازوؤں پر نشان دیکھ رہے ہیں یہ رسیوں کے نشان ہیں, مجھے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک رسیوں میں باندھ کے آیا گیا, اور نانا جان اگر آپ کی بیٹی کے لیے یہ ممکن ہوگا, اگر زینب بنت علی دکھا سکتی تو وہ آپ کو اپنی پشت دکھا دی
بیچ میں حجاب بنے, اس میں مبارک رمضان کے ایک مقدس تنہا میں ہم سب کو گناہوں کی قید سے آزاد فرما، امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، جہاں کی جہاں کے مسکو ہم سب کو فتح و نصرت و کامیابیوں کا حامی کا فرما، جن مومنین